समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुबह का समय दिन की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यही वह समय होता है जब हम दिन भर की योजनाएं बनाते हैं और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ते हैं। सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ दिन की शुरुआत हमें बेहतर निर्णय लेने और समय के साथ कदम मिलाकर चलने में मदद करती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड पर प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीना आरेकल। 25 मार्च की ताजा सुबह में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की प्रमुख खबरें, इतिहास के पन्नों से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं और उन महान व्यक्तित्वों के परिचय जिनका जयंती या पुण्यतिथि आज के दिन से जुड़ी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज सवेरे में हर जानकारी का उद्देश्य है आपकी दिन की शुरुआत को और अधिक सार्थक बनाना।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम वैष्णवी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 25th ऑफ मार्च। लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस वैष्णवी।
जी बिल्कुल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि खुला, सुरक्षित और सुलभ होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। श्री मोदी ने कल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकी से भी टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर चर्चा की, जिसमें वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of 7 empowered groups to deal with potential long-term impacts of West Asia conflict and urged states to work with the center in a Team India approach to ward off the crisis. In a statement in Rajya Sabha, Mr. Modi said that the 7 empowered groups will deal with the consequences of war and evolve strategies on fuel, fertilizers, gas, supply chains and inflation.
भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे।
The Prime Minister reiterated India's position of dialogue and diplomacy as the only solutions to the restoration of peace in West Asia. He also said India is in constant touch with all parties to stress de-escalation.
युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है।
Acknowledging that the situation is constantly changing, Mr. Modi called upon citizens to remain prepared for any eventuality.
सरकार ने देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु एक नया आदेश जारी किया है। ये निर्देश होर्मुज जलडमरू मध्य में अवरोध के कारण ईंधन आपूर्ति में संभावित बाधाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जारी किया गया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं तक पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने से उन क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता बढ़ेगी जहां पाइपलाइन सुविधा नहीं है।
The Gujarat Assembly has passed the Uniform Civil Code UCC bill with majority voice vote after a marathon debate of more than 7 hours yesterday. The bill proposes a common legal framework to govern marriage, divorce, succession and live-in relationships irrespective of religion. Earlier in the day, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel tabled the Gujarat Uniform Civil Code 2026 a week after a state-appointed panel submitted its final report on implementation of the UCC. With the passage of the bill, Gujarat became the second state in the country after Uttarakhand to pass the UCC. Uttarakhand became the first state to pass a UCC bill in February 2024. The proposed law will extend to the entire state and also apply to residents of Gujarat living outside its territorial limits. However, the bill document states that the code will not apply to members of scheduled tribes and certain groups whose customary rights are protected under the Constitution.
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने आज नरसंहार दिवस पर शोक व्यक्त किया है। ये दिवस 25 मार्च 1971 के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए श्री रहमान ने कहा कि स्वतंत्रता प्रेमी बांग्लादेश के इतिहास में 25 मार्च 1971 सबसे शर्मनाक और क्रूर दिनों में से एक है। इस दिन पाकिस्तानी कब्जे वाली सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर बांग्लादेशियों का नरसंहार किया था।
The first edition of the Khelo India Tribal Games is beginning in Chhattisgarh today. It will continue till the 3rd of April, featuring events in 7 sports disciplines. Our correspondent has the details.
The first Khelo India Tribal Games will be formally launched in Raipur today. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandviya, will inaugurate the event. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Dev Sai will also be present on the occasion. The objective of this event is to provide a national-level platform to youth from tribal regions across the country, enabling them to gain recognition and opportunities for their sporting talent. The Khelo India Tribal Games will be held across 3 cities in Chhattisgarh, Raipur, Jagdalpur and Ambikapur. Raipur will host competitions in football, hockey, archery, swimming, weightlifting and kabaddi. Bastar will host athletics events while Sarguja will host wrestling and Malkhamb competitions. More than 3,000 tribal athletes and officials from nearly 30 states and union territories of the country are participating in the games. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
श्रोताओं अब रुख करते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर जहां से आपको मिलेगी ताजा हलचल और वे अहम खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल बजट 2026-27 पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार नीति आयोग की तर्ज पर एक नया थिंक टैंक दिल्ली इंस्टीट्यूशनल थिंक टैंक स्थापित करेगी। साथ ही शहर को उन्नत प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के केंद्र में स्थापित करने के लिए नई सेमीकंडक्टर और ड्रोन नीतियां लाई जाएंगी। वहीं प्रदूषण नियंत्रण के लिए एमसीडी को 204 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट दिल्ली को एक आधुनिक, स्वच्छ, सुरक्षित, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल वैश्विक राजधानी में बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। वहीं दिल्ली में आज से 31 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भारत मंडपम में पहली बार शुरू होने जा रहा है। इसमें 47 देशों की 140 से अधिक फिल्में राजधानी के कई स्थानों पर दिखाई जाएंगी। इस फिल्म महोत्सव में निःशुल्क सार्वजनिक प्रदर्शन, चर्चाएं, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस फिल्म महोत्सव में प्रवेश अग्रिम बुकिंग के आधार पर होगा।
And Vaishnavi, now from Delhi, let's move on to Chennai. Mm-hmm. The Chief of Integrated Defence Staff, Air Marshal Ashutosh Dixit, visited the Defence Services Staff College, Wellington, from 22nd to 24th March. During the visit, he addressed the student officers of the Indian Defence Forces and those from friendly nations attending the 81st Staff Course at the DSSE. In this address, the CISC spoke on the evolving character of warfare and the strategic challenges confronting India. He emphasized the importance of jointness and synergy among the services to effectively address security dynamics. He commended DSSC for its pivotal role in shaping future military leaders and underscored the significance of professional military educating in enhancing operational preparedness and informed decision-making. In his address, he spoke about the transformative reforms undertaken in the Indian military in the backdrop of emerging challenges. He highlighted the need for military leaders to adapt to the changing character of war and importance of inter-service energy. Some more from Chennai. The Chennai Airport Phase 2 International Terminal will open by December, is set to handle 35 million passengers annually. The project will be completed by December this year. The truss structure for the terminal facade is being installed. Vehicle movement between departure terminals has been altered temporarily to accommodate construction. Over 40% of the total construction work has been completed in the terminal's extension skeletal structure. The terminal will feature additional baggage conveyors, immigration and check-in counters, and modern amenities. Check-in counters will increase from 120 to 192.
और चेन्नई से अब चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मुंबई में राज्य परिवहन निगम की नई राजमाता जीजाऊ बस सेवा का शुभारंभ किया। राजमाता जीजाबाई के नाम पर शुरू की गई इस नई बस सेवा का उद्देश्य राज्य भर के यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधाएं प्रदान करना है। इस पहल के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से लगभग 3,000 बसें शामिल की जाएंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होंगी। वहीं महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष सेलार ने घोषणा की है कि मुंबई में जल्द ही मराठी सिनेमा के लिए एक विशेष थिएटर स्थापित किया जाएगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सेलार ने कहा कि सरकार वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे के विकास और अनुमतियों में आसानी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण मराठी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
News from Bengaluru now. In Bengaluru, Royal Challengers Bengaluru announced a tribute to fans who lost their lives last year. Players will wear jersey number 11 during warm-ups, black armbands in the match, and 11 seats at M. Chinnaswamy Stadium will remain empty, CEO Rajesh Menon said. Menon highlighted preparations to ensure a safe match day experience, including strict adherence to SOPs and a revised operational framework involving BCCI and Karnataka State Cricket Association. The association will act as lead organizer while both parties implement safety protocols. The franchisee has strengthened crowd management with AI-powered CCTV, real-time monitoring and 7 crore rupees in infrastructure upgrades. Entry, exit and fan movement systems have also been reworked. Tickets go live on March 24 at 4 p.m. with metro access included and gates opening 4 hours earlier. The unbox event has been cancelled to focus on match day execution. Some more from Bengaluru. In Bengaluru, hyperbaric oxygen therapy is offering new hope to patients with diabetic foot ulcer, helping accelerate healing and prevent amputations. The therapy was launched at Karnataka Institute of Endocrinology and Research in Indiranagar. Sharan Prakash R. Patil said it provides a vital path to recovery for patients. India has a high burden of diabetes, with DFU affecting up to 1/3 of patients. Experts note HBOT improves healing by increasing oxygen supply, reducing infections and saving limbs.
और अब कोलकाता की ओर रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस अल मंगलवार को विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी सूची उपलब्ध कराने में विफल रही। सुवेंदु अधिकारी ने 17 मार्च को इन विवरणों की मांग करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने अगली सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित की है।
News from Hyderabad. As part of the continued efforts to accelerate district level action in national HIV response, the National AIDS Control Organization, NACO, Ministry of Health and Family Welfare, a government of India, is intensifying its engagement with states. A workshop called Suraksha Sankalp Karyashalas would be held in Hyderabad, which would be chaired by the Additional Secretary and Director General, NACO, Dr. Rakesh Gupta. This initiative is being undertaken under the larger framework of Mission AIDS Suraksha, through which NACO is engaging with states to strengthen program implementation in districts contributing significantly to the HIV burden. Telangana, whose prevalence is 0.41 and people living with HIV/AIDS burden is 1,56,961, has been identified as a priority state under this focused approach, with total of 19 priority districts including Hyderabad, Rangareddy, Khammam, Karimnagar, Nalgonda, Siddipet, Medak, Warangal, Nizamabad, Madilabad, Suryapet, Pedapalli, Jangaon, Vikarabad, Kamareddy, Hanumakonda, Sangareddy, Mehboobabad and Jaishankar Bhopalapalli identified for intensified program action. Representatives from these districts will present progress, discuss challenges and develop targeted strategies for strengthening service delivery.
नीना बा कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और श्रोताओं को बताते चलते हैं कि मेट्रोज में आज मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की कर लेते हैं। तो राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। शहर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और बात करें कोलकाता की तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
Chennai is expected partly cloudy sky. The minimum temperature will be around 25 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Bengaluru is expected partly cloudy sky. The minimum temperature is expected to be 20 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected fog, partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between minimum of 22 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
और अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने समय के साथ इतिहास के पन्नों में अपनी खास जगह बनाई।
सो दिस डे इन हिस्ट्री, इन 1609 हेनरी हडसन एम्बार्क्स ऑन एन एक्सप्लोरेशन फॉर डच ईस्ट इंडिया कंपनी एट पुलिकैट। इन 1931 गणेश शंकर विद्यार्थी मार्टर्ड इन हिंदू मुस्लिम रायट एट कानपुर। ही वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ वीकली प्रताप। In 1954, the first helicopter S-55 arrived ferried to Delhi, the Indian Air Force experience with rotary wing aircraft. It was indeed a red letter day in the history of IAF, a befitting gift on its coming of age when the first helicopter wearing IAF markings appeared at Palam in the form of a Sikorsky S-55. Such a swift action, complete involvement and dedication on the part of the crew and technicians was the clear indication of the standards with which 104 set about its task for others to emulate.
और 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क देशों का स्थायी सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में खोला गया। इस कदम ने दक्षिण एशियाई के देशों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
In 1989, India's first supercomputer, XMP-14 of US make, was dedicated to the nation. In 1997, Justice Jagdish Saran Verma sworn in Chief Justice of India. And in 1999, Arithi Ponappa, former national tennis champion, called it quits from competitive tennis in Bangalore.
और 2008 में टाटा समूह की पुणे स्थित फर्म कंप्यूटेशन रिसर्च लेबोरेटरीज ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनी याहू के साथ साझेदारी की घोषणा की। ये कदम भारतीय कंपनियों के वैश्विक तकनीकी सहयोग और विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। वहीं इसी वर्ष अंतरिक्ष यान एंडवर ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी की और 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किए जाने संबंधी विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई। अब ये तो थे इतिहास के पन्नों की चर्चाएं, अब चलते हैं आगे और अब बात करते हैं उन झलकियों के बारे में जिन्होंने जिन प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज जयंती या पुण्यतिथि है।
So today we remember Richard Arvin Fleischer, who was an American film director. His career spanned more than four decades, beginning at the height of the golden age of Hollywood and lasting through the American New Wave. Though he directed films across many genres and styles, he is best known for his big-budget tentpole films, including 20,000 Leagues Under the Sea, The Vikings, Barabbas, Fantastic Voyage, the musical film Dr. Dolittle, the war epic Tora Tora Tora, the dystopian mystery thriller Soylent Green. Here's a clip.
New York City, 50 years from today. Nothing runs, nothing works.
They gave me a quarter of a kilo.
But people are the same, and people will do anything to get what they need. What they need most is Soylent Green.
आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर में अपनी मासूम अदाकारी और भावपूर्ण अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री निम्मी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उनका वास्तविक नाम नवाब बानो था और वे 1950-60 के दशक में की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। उन्होंने राज कपूर की फिल्म बरसात से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसने उन्हें रातों रात प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद उन्होंने आन दाग और उड़न खटोला जैसी कई सफल फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई संवेदनशीलता और सादगी प्रदान की। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज भी उन्हें हिंदी सिनेमा की एक यादगार और प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता है। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की चर्चित अभिनेत्री निम्मी की स्मृति में आइए उनकी फिल्म बरसात का एक खूबसूरत गीत सुनते हैं।
देखे सब देखे हम तरसे हो सब देखे हम तरसे ओ, सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो सब देखे हम तरसे जैसे बरसे कोई बदरियो ऐसे अखियों बरसे जैसे बरसे कोई।
टुडे इज द बर्थडे ऑफ द म्यूजिक लेजेंड एल्टन जॉन। Sir Elton John is an English singer, songwriter, pianist and composer. He has worked with lyricist Bernie Taupin since 1967. They have collaborated on more than 30 albums. John has sold more than 300 million records, making him one of the world's best-selling music artists. His tribute single Candle in the Wind, 1997, rewritten in dedication to Diana, Princess of Wales, sold over 33 million copies worldwide and is the best-selling single in the history of the UK and US single charts. John has received Grammy Awards, Brit Awards, Academy Award, Golden Globe Award, and the list goes on. So enjoy this medley by the legend.
Something's like
बाल कलाकार से लेकर सफल नायिका तक का सफर तय करने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया था और धीरे धीरे हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। उनकी प्रमुख फिल्मों में हम दोनों, गुमनाम, जब जब फूल खिले और इत्तेफाक शामिल है, जिन्होंने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं नंदा की फिल्म जब जब फूल खिले का ये यादगार गीत।
ये
नंदा अपनी सादगी और प्राकृतिक अभिनय शैली के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा में महिला पात्रों को नई पहचान दी। उनके योगदान के लिए उन्हें कई फिल्म पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया और उद्योग जगत में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। और अब अभिनेत्री नंदा की स्मृति में आइए सुनाते हैं आपको एक और खूबसूरत गीत।
जइयो कहाँ ए हजूर
कजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे ई चितवन के कोरी माने तो समझा जा रे
मतलब
Aretha Franklin was an American singer, songwriter, pianist, and civil rights activist. Hit songs such as Respect, Chain of Fools, Think, A Natural Woman, I Never Loved a Man, and I Say a Little Prayer propelled her past her musical peers. By the end of 1960s, Aretha Franklin had come to be known as the Queen of Soul. Here's the song, I Say a Little Prayer for You.
The moment I wake up.
हिंदी साहित्य की दुनिया में अपने संवेदनशील कविताओं के लिए पहचाने जाने वाले तेज राम शर्मा का जन्म 25 मार्च 1943 को हुआ था। वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज की भावनाओं और वास्तविकताओं को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। तेज राम शर्मा की भाषा सरल और सहज थी जिससे उनकी रचनाएं आम पाठकों के बीच भी लोकप्रिय रही।
अनीता ब्रायंट इज एन अमेरिकन सिंगर। शी स्कोर्ड फॉर टॉप 40 hits in the United States in the late 1950s and early 1960s, including Paper Roses, which reached number 5 on the charts. Let's listen to this soothing number by Anita in My Little Corner of the World.
Oh, come along with me to my little corner of the world and dream a little dream in my little corner.
अब हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा में सादगी और स्वाभाविक अभिनय की मिसाल माने जाने वाले फारूक शेख के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन 1948 को हुआ था। वे हिंदी फिल्मों और टेलीविजन दोनों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले लोकप्रिय अभिनेता थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत समानांतर सिनेमा से की और कई यादगार फिल्मों में काम किया। चश्मे बद्दूर, कथा और उमराव जान जैसी यादगार फिल्मों में अपने सहज और प्रभावशाली अभिनय के लिए प्रसिद्ध फारूक शेख ने भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। और अब आइए उनकी एक यादगार फिल्म का ये मधुर गीत सुनते हैं।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना, आज फिर दिल ने एक
आज जन्मदिन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रसिद्ध गायक पंडित मुकुल शिवपुत्र का। वे महान संगीतकार पंडित कुमार गंधर्व के पुत्र हैं और उन्होंने अपने पिता से ही संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। मुकुल शिवपुत्र अपनी गहरी और भावपूर्ण गायकी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अब आइए सुनते हैं पंडित मुकुल शिवपुत्र की खूबसूरत प्रस्तुति।
एक सुगना दे जाए रे भमना, एक सुगना दे जाए, एक सुगना दे जाए भमना, एक सुगना दे।
श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और नीना को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।